वो 4-5 दिनों से रात को घर नहीं आ रहा था। रात तो रात, वो तो दिन में भी कभी घर का चक्कर नहीं लगाता था। आरजू काफी हद तक बेफिक्र थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसके बेड पर नहीं सोती थी। वो रोजाना जमीन पर ही सोती थी। पुप्पो के कहने के ऐन मुताबिक इसने किसी से इस बात का जिक्र ना किया, लेकिन ऊन का जाना और फिर वापस ना आना इस बात को जाहिर कर रहा था कि इन दोनों में सब कुछ ठीक नहीं। ऊन इस वक्त नाइट ड्यूटी पे सड़क पे गाड़ियां चेक करवा रहा था। वो आने जाने वाली हर गाड़ी पर नजर रखे हुए गाड़ी की मुकम्मल चेकिंग कर रहा था। पिछले 4-5 दिनों से इसकी यही रूटीन थी। वो दिन रात ड्यूटी पे था। ऊन थक जाता तो उमर आ जाता, उमर थक जाता तो ऊन इसकी जगह संभाल लेता। और इस चेकिंग की वजह ये थी कि बहुत बड़े आदमी की बेटी अपने घर से भाग गई थी। इसे नफरत थी ऐसी लड़कियों से, जो खुद तो इस तरह से घर से भागकर अपनी इज्जत को दो कौड़ी का करती थी और अपने पीछे अपने घर वालों को अजियत में छोड़ जाती। अगर ये लड़की मेरी बहन बेटी होती ना, तो कसम से गोली मार देता, ना कि इस तरह पागलों की तरह ढूंढ रहा होता। और इसके बाप ने क्या इरशाद फरमाया, सुना है तूने, मेरी बेटी नादान है, वो तो ये सब कुछ समझती ही नहीं। ऊन और उमर अपनी अपनी भड़ास एक दूसरे को सुना रहे थे। यार 4 दिन से ठीक से नींद भी नहीं पूरी हुई, मिसबा भी नाराज है। इससे कुछ दिन पहले वादा किया था कि 4-5 दिन की छुट्टी लेकर इसे घुमाने लेके जाऊंगा, और यहाँ 4-5 दिन से अटका हुआ हूँ। यार ये वाला मसला नहीं होता तो मैं तेरी छुट्टियों का कुछ बंदोबस्त कर देता। ऊन ने इसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं यार, मुझे तो तेरी टेंशन हो रही है। अभी तेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि यहाँ सड़क पर बैठा दिया। भाभी के भी कुछ अरमान होंगे, क्या सोचती होगी बेचारी। बस बस, मेरी फिल्म की दुकान, कोई अरमान नहीं है तेरी भाभी के, और तेरी इस भाभी को मैं तेरी भाभी रहने भी नहीं दूंगा। बस कुछ वक्त की तो बात है, फिर इसे छोड़ दूंगा। ऊन ने अपना प्लान बताया। मतलब ऊन, तू अपनी माँ की शर्त को लेकर सीरियस नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। एक लड़की के लिए मेरी माँ मुझसे ये कहती है, इसे अपना लोगे तो मेरा एहसान चुका लोगे। उमर, क्या एक माँ ऐसे अल्फाज कह सकती है, वो भी इस लड़की के लिए जिसे इस घर में एक दिन नहीं हुआ था? मैं मानता हूँ जो कुछ भी हुआ, इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से मेरी माँ मुझसे इस तरह से बात कर रही है। ठीक है, मैंने गुस्से में कह दिया था कि मैं आपका ये एहसान भी नहीं रखना चाहता, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी माँ मुझे जन्म देने की कीमत मांगे। वो औरत वाकई माँ कहलाने के काबिल नहीं है, ऊन ने कहा तो उमर नफी में गर्दन हिलाकर एक साइड हो गया। वो चाहकर भी इसे कुछ नहीं समझा सकता था। आसिम, यहाँ पुलिस क्यों है? तामिया ने परेशानी से कहा। सारी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। तुम फिक्र मत करो बेबी, मैं संभाल लूंगा, ऐसे पुलिस वालों को संभालना मुझे आता है। इसीलिए तो तुम्हें दिल दिया है बेबी, मुझे पता है तुम ऐसी सिचुएशन से नहीं घबराते, तामिया निसार होने वाले अंदाज में बोली। बेबी, आज डिनर के बाद मेरे फ्लैट पे चलो ना, कल वादा तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। कल शॉपिंग पे चलूंगी बेबी, लेकिन आज फ्लैट पे नहीं चल सकती। तुम्हें तो पता है मेरी माँ मुझ पे नजर रखे रहती है, कहाँ से आई हो, कहाँ गई थी और पता नहीं क्या क्या। सॉरी बेबी, फ्लैट में जाने का प्लान हम और किसी दिन बनाएंगे, तुम माइंड तो नहीं करोगे ना, तामिया ने होशियारी से इसे अपने झांसे में फंसाते हुए कहा। ऑफ कोर्स नॉट बेबी, जब तुम इजी रहो, लड़के ने अपने अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा। कोई बात नहीं बेबी, हम तो वैसे भी कल शॉपिंग में भी मिल ही रहे हैं ना, तामिया ने फिर से बात का आगाज किया। टुक टुक टुक, ऊन ने गाड़ी की खिड़की पर अपना डंडा बजाते हुए दस्तक दी। हाँ भाई, कौन है तू, लड़की को कहाँ लेके जा रहा है, ऊन ने अपने महसूस अंदाज में कहा, जबकि ऊन को देखकर तामिया के रोंगटे खड़े हो चुके थे। शायद नहीं, यकीनन ऊन ने इसे नहीं पहचाना था, वो इनके घर पर कभी आया नहीं था और निकाह वाले दिन तो इसने नजर उठाकर किसी की तरफ देखा तक ना था। जी सर, दोस्त है, इसे घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ। तू अपनी दोस्त को रात के 10:30 बजे घर ड्रॉप करने जा रहा है, ये कौन सा वक्त है अबे दोस्तों से मिलने का, चल निकल बाहर। ओ दोस्त मैडम, तुम भी निकलो बाहर, ये दोस्ती के नाम पर क्या कर रहे हो तुम लोग, सब समझ में आता है। सर जाने देना, शरीफ लड़की है, बेकार में बदनाम हो जाएगी, लड़के ने इसके हाथ में नोट थमाते हुए कहा। अगर इतनी ही शरीफ होती तो आधी रात को सड़कों पे ना मिलती, बहुत देखी हैं ऐसी शरीफ सादियां। मैडम बाहर निकलो, ऊन ने नोट इसके मुंह पर मारते हुए कहा। सर प्लीज जाने दीजिए ना, इस लड़की का घर पहुंचना बहुत जरूरी है। सर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, इस लड़के ने लड़की की तरफ इशारा किया जो अपना मुंह छुपाए खड़ी थी। सुन, डीसीपी आ रहा है, उमर ने पीछे से आते आदमी की तरफ इशारा किया तो ऊन ने इन दोनों को भी जाने का इशारा कर दिया। ऑफिसर्स, कुछ पता चला? हम आती जाती हर गाड़ी पर नजर रखे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि लड़की इस तरफ आएगी। या तो वो हम सबको चकमा देकर बहुत आगे निकल चुकी है या शायद छुप कर बैठ चुकी है। इसे अपने बाप की पहुंच का अंदाजा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस सड़क पर निकलने की गलती करेंगे। हमारा इस तरह आते जाते लोगों को परेशान करना बेफजूल है। इस तरह लोगों की रोजमर्रा जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, ऊन ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा तो डीसीपीओ ने सर हिलाया। ठीक है, तुम लोग काफी दिनों से इस काम में बिजी हो, मेरे ख्याल से आज तुम लोगों को रेस्ट करना चाहिए। तुम लोगों की जगह किसी दूसरे अफसर को अपॉइंट कर दूं, डीसीपी ने कहा तो ऊन ने उमर को देखकर आंख मारी। मतलब आखिरकार जान छूट चुकी थी। आज 5 दिन बाद वो घर वापिस आया। इसे यकीन था कि इसकी गैर मौजूदगी में जरूर वो इसका बेड इस्तेमाल करती होगी। पहले तो वो इसे लात मार के नीचे फेंकने का इरादा रखता था, लेकिन कमरे में आने के बाद इसे थोड़ी सी रोशनी में कुछ फासले पर जमीन पर वजूद लेटा हुआ महसूस हुआ। फर्मा बरदार टाइप बीवी है, ऊन बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर में चेंज करके वो वापिस आकर अपने बेड पर लेटा, लेकिन इसे एहसास हुआ जैसे वो जाग रही है। जबकि बार बार हाथ पांव हिलने की वजह से कभी छन छन तो कभी छम छम की आवाज आती। सुनो लड़की, ये अपना बैंड बाजा उतार कर सोया करो, तुम्हारी वजह से सारी रात मुझे नींद नहीं आती, वो सख्त आवाज में बोला था। कुछ देर तक कमरे में कोई आवाज ना आई तो फिर ऊन भी पुरसकून होकर लेट गया। फिर अचानक से छम छम और छन छन की इकट्ठी आवाज सुनाई दी। यकीनन वो सब कुछ उतार रही थी। अगर मेरे कमरे में रहना है तो इस बैंड बाजे से परहेज करो, आइंदा मेरे कानों में ये आवाज नहीं पड़नी चाहिए, वो सख्ती से कहता करवट बदल गया। एक बात तो बता, अगर तू भाभी को तलाक देने वाला है, तामिया से राबता क्यों नहीं कर रहा? ये ना हो कि तेरी तलाक होते होते इसकी शादी हो जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आज ही इससे राबता करूंगा। आज ही नहीं, अभी इसी वक्त। चल फोन निकाल कर मुझे दे, उमर ने ये कहने के साथ ही जैकेट से फोन निकाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं तामिया से बात कर रहा हूँ? उमर ने नरम लहजे में कहा। जी मैं ही बात कर रही हूँ, आप कौन? मैं ऊन का दोस्त, उमर ने शरारत से कहा। और ये ऊन कौन है? तामिया ने एक अदा से कहा। अरे आप ऊन को नहीं जानती? वही ऊन जो रहमान शॉपिंग मॉल में आपको देखकर अपना दिल हार बैठा, वही ऊन जो पहली नजर में आपको अपना सब कुछ मान बैठा। अरे वही ऊन जो, वेट वेट वेट, मैं समझ गई, आपके ऊन मेरे फैन है, राइट? तामिया ने अपने बालों की एक लिट अपनी उंगली में लपेटे हुए कहा। जी जी, फैन कहना ज्यादा ठीक रहेगा, उमर ने इसकी बात का जवाब देते हुए ऊन को देखा, जबकि ऊन को तामिया का इस तरह किसी गैर से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। अब क्या मैं आपके दोस्त से बात कर सकती हूँ? तामिया ने कहा। जी वो तो आपसे ही बात करने के लिए बेचैन बैठा है, उमर ने फोन इसकी तरफ बढ़ाया। हेलो, ऊन ने मोबाइल कान से लगाया। आवाज तो अच्छी है मिस्टर, आपके बारे में सोचा जा सकता है, तामिया ने एक अलग ही अंदाज में कहा। लेकिन इसकी आवाज इस दिन से नहीं मिल रही थी, इसने सिर्फ सॉरी बोला था, इसलिए ऊन ने आवाज पर ध्यान देना फजूल समझा। तामिया, मैं कोई फजूल बात नहीं करूंगा, मैंने कुछ दिन पहले रहमान शॉपिंग में देखा था और इस दिन शादी के बारे में सोचा। मेरी महाना तनख्वाह 45,000 है, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, आगे पीछे का मिलाकर 2-3 लाख एक महीने में कमा लेता हूँ। शादी के बाद मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, अपनी शक्ल मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, अपने खानदान का सबसे हैंडसम लड़का मशहूर हूँ। लेकिन फिर भी अगर काबिले कबूल ना लगूं तो इनकार कर सकती हो। फोन वो बंद कर चुका था जबकि तामिया अभी तक इसकी आवाज और नौकरी में खोई हुई थी। अल्लाह जी, ये वो वाला ऊन ना हो, अगर ये वो होता तो क्या मुझे फोन करता? क्या इसे पता नहीं कि मैं इसकी कजन हूं? नहीं, ये कोई और होगा। तुम ये ले लो, आरजू तुम पे ये कलर बहुत सूट करेगा, जरीश ने एक प्यारा सा सूट इसके साथ लगाया। ये तो 4,000 का है, आरजू ने सूट को खुद से दूर किया। क्या मतलब 4,000 का ही है ना कि 40,000 का? और वैसे भी चाची अम्मी ने सिर्फ तुम्हारी शॉपिंग के लिए पैसे दिए हैं, जिसमें महरिश ने 3 सूट ले लिए हैं। अब शराफत से अपनी सारी शॉपिंग करो, और मेहंदी और शादी के ड्रेसेस तुम्हारे हमारे जैसे ही होंगे, वो लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, वलीमे के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस पसंद कर लो, वो ये कहती हुई कोई और ड्रेस देखने लगी, जबकि आरजू को वो वक्त याद आ रहा था जब 200 रुपए के लिए भी इसे दिन रात ताने सुनने पड़ते थे। मेरी बात सुनो आरजू, मैं देख रही हूँ तुम ऊन को लेकर बहुत लापरवाह हो बेटा। मैं ये नहीं कहती कि तुम हर वक्त इसके साथ रहो, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इसका ख्याल रखो बेटा, वो शोहर है तुम्हारा। लेकिन पुप्पो, वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, इतना गुस्सा करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने मेरी शक्ल भी देखी है, आरजू ने कहा। लेकिन बेटा, तुम इससे बात करने की कोशिश किया करो, तुम इसे मजबूर करो कि वो तुम्हारी तरफ देखे, तुमसे मोहब्बत करने लगे। नहीं पुप्पो, वो किसी और से प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे पहले दिन ही बता दिया था, आरजू ने जल्दी से इनकी बात काटी। तो तुम अपने शोहर को किसी और से मोहब्बत करने दोगी? वो शोहर है तुम्हारा, इस पर तुम्हारा हक है, तुम क्यों इसे किसी और से मोहब्बत करने का मौका दे रही हो? अगर इसे घर में ही मोहब्बत मिलने लगे तो वो क्यों किसी और की तरफ देखेगा, क्यों किसी और से प्यार करेगा? तुम्हें अपने शोहर को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करना होगा। आरजू, ऊन का पीछा छुड़वाओ इस लड़की से, वो तुम्हारा शोहर है, सिर्फ तुम्हारा, इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दो। पुप्पो इसे समझा कर चली गई। ये मेरे कपड़े किसने धोए और इस्त्री किए हैं? ये तो आज लॉन्ड्री में जाने वाले थे, ये किसने धोए? इसे अपने किसी भी सामान के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं थी, अब अपने कपड़े सलीके से अलमारी में लटके इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। वो जल्दी से बाहर आया। मेरे कपड़े किसने धोए? वो गुस्से से पूछ रहा था। वो आरजू ने तुम्हारे कपड़े धोकर अच्छे से इस्त्री करके रखे थे, जुबैदा बेगम ने मुस्कुरा कर बताया, जबकि ऊन के चेहरे पर गुस्सा अच्छे से देख चुकी थी। ऊन हाँ में गर्दन हिलाता अंदर चला गया। इसको नॉर्मल देखकर जुबैदा बेगम ने भी सुकून का सांस लिया, मगर अगले ही लम्हे ऊन को कपड़ों का ढेर उठाकर लाते देखा। ऊन ने वो कपड़े सहन के बीचों बीच रखे और जेब से लाइटर निकालकर सब कपड़ों को नजरे आतिश कर दिया। जुबैदा बेगम में इतनी हिम्मत ना थी कि वो इसे रोक पाती। अगर आपकी भतीजी ने मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो मैं इसके साथ भी यही करूंगा, वो गुस्से से कहता बाहर निकल गया, जबकि हानिया ने आरजू को अपने साथ लगा लिया जो डर से कांप रही थी। वो रात 2:30 बजे वापिस आया था। इसने देखा आरजू जमीन पर अपने आप को चादर से कवर किए सो रही थी। इसे बेइख्तियार इस मासूम सी लड़की पर तरस आया। क्या इसने अपनी जिंदगी के बारे में ये सोचा होगा कि ये होगी इसकी जिंदगी? ना जाने कितने ख्वाब लेकर आई थी यहाँ। मैं वादा करता हूँ आरजू, मैं खुद तुम्हारी शादी किसी बहुत काबिल इंसान से कराऊंगा, लेकिन मैं चाह कर भी तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। मैं तो पहले से ही किसी और से प्यार करता था, मेरी माँ और तुम्हारे पुप्पो ने यह फैसला करते हुए एक बार ना सोचा। जानता हूँ तुम इस वक्त इतनी प्रॉब्लम में थी कि मेरी जगह कोई भी होता तो तुम इससे निकाह कर लेती और शायद इसके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारती, लेकिन मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता आरजू। वो कितनी देर इस सोए हुए वजूद पर नजरे गाड़े सोचता रहा। सब कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं अपनी नजरों में किसी और का चेहरा नहीं बसा सकता, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। शायद तुम्हें मेरे जज्बात, मेरी बेवकूफ़ी लगे, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मेरे निकाह में हो, और ये निकाह मुझे अगर बहकने पर मजबूर कर गया तो मैं कल तामिया को अपनी मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाऊंगा? मैं भी एक आम सा बंदा बशर हूँ आरजू, जानता हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ, लेकिन मजबूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ। मैं अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं बना सकता। मेरी मोहब्बत पर सिर्फ इस लड़की का हक है, जिसे मैंने पहली नज़र में ही दिल दिया है, और कोई नहीं, कभी नहीं। वो यही सोचते हुए लेट गया। कब से वो इसकी नजरें अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। पुप्पो की बातें इसे सारी रात ना सोने देती। ये एहसास कि वो किसी और को चाहता है, इसे चाह कर भी ऊन के करीब ना जाने देता। अभी इसे लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि इसका फोन बजा। इसने फोन उठाया, तामिया का मैसेज था, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इसने मैसेज का रिप्लाई करने से बेहतर कॉल करना समझा। अस्सलाम वालेकुम, इतनी रात गए क्यों जाग रही हो तुम? ऊन ने पूछा। वालेकुम अस्सलाम, वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? तामिया ने कहा। क्या रूबरू बैठकर मेरे सवाल का जवाब दोगी? ऊन ने पूछा। हाँ यही समझ लो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुमने कहा था अपनी फोटो सेंड करोगे, वो तुमने की नहीं। मुझे नहीं पता था तुम मुझे देखने के लिए इतनी बेताब हो। खैर, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी पिक्चर सेंड कर देता हूँ। और जहाँ तक मिलने की बात है तो कल कॉफी शॉप में मिल लेते हैं। ओके, फिर हम कल मिलते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आने में? मेरा मतलब है, तुम्हारी फैमिली कोई एतराज़ तो नहीं करेगी? तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं आ जाऊंगी, तुम पहुंच जाना। वैसे भी तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? तामिया ने फोन बंद करने से पहले पूछा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अभी तक मेरे प्यार पे यकीन नहीं आया। खैर, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें सबसे पहले शादी की ऑफर नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। वो बात करते करते फोन बंद कर चुका था, जबकि आरजू इसका लफ्ज पर लफ्ज सुन चुकी थी। एक आखिरी उम्मीद थी इसे पाने की, वो भी आज खत्म हो गई। वो कभी इसका नहीं हो सकता, आरजू ने सोचते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ किए। वो कैसे एक जबरदस्ती के रिश्ते को निभाने के बारे में सोच रही थी? उन कभी इस जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं रहने देगा। सुनो लड़की, शायद वो जानता था कि वो जाग रही है। अंधेरे में वो सिर्फ इसकी आवाज ही सुन पाई थी, मगर बोली कुछ नहीं। नीचे बहुत सर्दी है, तुम यहाँ ऊपर आ जाओ। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने दिल को नहीं समझा पाया था। बेकार में बीमार पड़ जाओगी, वो इसकी तरफ से करवट लेता कहने लगा। अब इसकी मर्जी, वो आए या ना आए, वो अपना फर्ज पूरा कर चुका था। पिछले कुछ दिनों से सर्दी ज्यादा हो रही थी, आरजू ने सर्दी का सोचकर बेड पर जाना ही बेहतर समझा। वो कोई गैर थोड़ी था, इसका शोहर था, मगर फिर भी इसके करीब जाते हुए इसे अजीब सी शर्म महसूस हुई थी। थोड़ी देर के बाद इसे महसूस हुआ कि आरजू बेड पर आ चुकी है। इसने इसे बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि वो ये बात जान चुका है। वो नहीं चाहता था कि आरजू कंफ्यूज हो या इससे कोई उम्मीद बांधे। वो तो बस इसको सर्दी ना लगने के ख्याल से इसे बेड पर बुला रहा था। वो ऊन के उठने से पहले उठकर बाहर चली गई थी। वो नहीं चाहती थी कि इसे देखकर इसका मुंह खराब हो। उठकर बाहर आई तो पुप्पू अपने लिए चाय बना रही थी। एक बार इसका दिल चाहा कि वो इनको ऊन की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुई सारी बात बता दे, लेकिन वो इनका दिल खराब नहीं करना चाहती थी। वो जो इससे ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद इसकी तरफ मुतवजा होकर वो अपनी माँ को नजरअंदाज करना छोड़ दे, वो इनकी उम्मीद को इस तरह से नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए इनके करीब आकर बैठ गई। पुप्पू ने एक नहीं बल्कि दो कप चाय बनाई थी, वो अक्सर इन्हीं के साथ चाय पीती थी। सब कुछ ठीक है ना, रोज वाला सवाल। जी पुप्पू, सब कुछ ठीक है, आरजू मुस्कुराकर बोली तो वो भी मुस्कुरा दी। ये क्या तरीका है? और घर में तुम्हारी बहन की शादी है, तुम सारी सारी रात घर वापस नहीं आते? इस घर को लेकर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनका तुम्हें एहसास होना चाहिए। तुम्हारी बीवी है इस घर में। आज बाबा सुबह सुबह इसकी क्लास लेने बैठ गए थे। पहली बात, मेरी कोई बहन नहीं है। दूसरी बात, इस घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मेरा काम है आपको एक महीने के बाद खर्चा देना। आखिर आप लोगों ने मुझे जन्म दिया है, इससे बढ़कर मेरी इस घर में और कोई जिम्मेदारी नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात, मेरी कोई बीवी नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों की बहू है जिसे आप लोग यहाँ लेकर आए हैं। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, और जबरदस्ती आप लोग मेरा इससे ताल्लुक बना नहीं सकते, इसलिए मेरे सामने इस तरह से बात मत किया कीजिए। वो हद दर्जा बदतमीजी से बोला था। उन, तुम्हारी बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने बाप के सामने खड़े हो। बाबा गुस्से से बोले, प्लीज इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहता, मुझे काम पर जाना है, वो बदतमीजी से कहता घर से बाहर निकल गया। उन कॉफी शॉप में इसका इंतजार कर रहा था। तामिया ने दूर से इसे बैठा देखा। मतलब मेरा शक ठीक था, ये तो पुप्पो का बेटा है, आरजू का शोहर, ये मेरा आशिक कैसे हो गया? इसने तो उस रात मुझे इस लड़के के साथ देखा था, इस हिसाब से तो इसे मुझे देखना तक नहीं चाहिए था। और ये किसी गलत फहमी का शिकार तो नहीं? तामिया दूर खड़ी सोचती रही। आरजू, ये कैसे हो सकता है कि तुझे मुझसे बेहतर कुछ मिल जाए? अब तू देखना मैं कैसे तेरी ऊन से तलाक करवा के तेरी शादी मामू से करवाती हूँ। इसने अपने फोन पर सामने बैठे ऊन को फोन मिलाया। तामिया, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इसने फोन उठाते ही कहा। सॉरी ऊन, मैं नहीं आ सकती, आज नहीं आ पाऊंगी, वो लहजे में मासूमियत लेकर बोली। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, हम फिर कभी मिलेंगे। वो मुस्कुराता हुआ उस कुर्सी से उठा और उसकी नजरों के सामने ही कॉफी शॉप से चला गया। मुबारक हो आरजू, तेरे नसीब में मामू ही लिखे हैं। तामिया मुस्कुराते हुए आई और इन सब में से एक कुर्सी पर बैठकर अपने लिए कॉफी ऑर्डर की। मैं तेरी ही नजरों के सामने तेरे शोहर को तुझसे छीन लूंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी, वो कॉफी की चुस्कियां लेते हुए बोली। घर में शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे। कल से जरिश ने माइयों बैठना था। वो अपने कमरे में आया तो जरिश कमरे में इसका इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं जानती हूँ आपको मेरा इस तरह से अपने कमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। मैं कभी खुलकर आपसे बात नहीं कर सकी, कभी आपको ये नहीं बता पाई कि सब भाइयों की तरह आप भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मैं जानती हूँ शायद मैं आपके दिल में वो मुकाम नहीं रखती जो आप मेरे दिल में रखते हैं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी शादी में मेरे पांचों भाई शामिल हों। ये कहते हुए जरिश की आंखों से आंसू निकला जो इसने फौरन ही साफ कर दिया और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ऊन को ऐसा लगा किसी ने इसका दिल अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। वो चाहे सबसे ये कहता फिरे कि इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन सच यही था कि वो इस घर के हर अफराद के लिए दिली जज्बात रखता था। इसने एक नजर बेड पर देखा जहां इसके वाइट कुर्ता पजामा सलीके से इस्त्री करके रखा गया था। अभी वो उठाकर कपड़े पहनने जा ही रहा था जब इसका फोन बजा। तामिया का नंबर देखा इसने फौरन फोन उठा लिया। हाँ तामिया बोलो। तुम कितने बड़े झूठे हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे छुपाकर इस तरह से मेरे साथ करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तुम मुझसे शादी करोगे तो इस लड़की का क्या होगा जिसके साथ तुम्हारी पहले से शादी हुई है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, वो रोते हुए बोली। नहीं तामिया ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैं इस लड़की को तलाक दे दूंगा। कमरे में आती आरजू के कदम वही रुक गए। तुम बस मुझे एक मौका दो, मेरे घर में शादी है, जैसे ही शादी खत्म हो जाएगी मैं इसे तलाक देकर तुमसे शादी करूंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये रस्म अटेंड करके तुम्हें फोन करता हूँ। वो फोन बंद करके जैसे ही पलटा, आरजू अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा रही थी। इसे लगा कि जैसे इसे कोई गलत फहमी हुई है, मतलब तामिया इसे इसी घर से फोन कर रही थी। ये थी नॉवल दीदारे इश्कम की 4th एपिसोड। एपिसोड पसंद आने पर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको इजीली मिल सके।